एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, फिर भी हम शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। लेखन प्रणालियों की दुनिया, यानी लिखने के अलग अलग तरीकों की।
नमस्कार।
और ये सिर्फ क ख ग या एबीसी नहीं है जैसा आपने कहा।
हाँ, ये निशान, ये अक्षर, हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हजारों सालों की इंसानी कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं।
बिल्कुल, और इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विषय को समझने में हमारी मदद करेंगी एंड्रयू रॉबिन्सन की किताबें, खास तौर पर राइटिंग सिस्टम्स और राइटिंग सिस्टम्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा,
रॉबिन्सन हमें दिखाते हैं कि लिखने की कला सिर्फ भाषा को कागज पर उतारना नहीं है, इसका मकसद और भूमिका कहीं ज्यादा गहरी है।
सही कहा, और आज के दौर में ये समझना और भी जरूरी हो गया है ना।
हाँ बिल्कुल, हम लगातार टाइप कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, लेखन हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है।
लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या था शुरू में?
और इसने हमें हमारी सभ्यताओं को कैसे बदला, ये बड़े सवाल हैं।
हाँ, चलिए इसी खोज पर निकलते हैं आज।
तो सबसे पहले एंड्रयू रॉबिन्सन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
हाँ,
ये एक ब्रिटिश लेखक हैं और पत्रकार भी रहे हैं।
अच्छा।
इनकी दिलचस्पी विज्ञान और मानवीकी दोनों में है।
हाँ,
ऑक्सफोर्ड से पढ़े और उनकी खासियत यह है कि वे भाषा, संस्कृति, पुरातत्व और यहाँ तक कि दिमाग कैसे काम करता है, इन सबको जोड़कर लेखन प्रणालियों को देखते हैं।
हाँ उनका नज़रिया सिर्फ भाषा विज्ञानियों या इतिहासकारों वाला नहीं है, बल्कि एक एक ज़्यादा बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है।
सही, वे सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन सी लिपि कैसी दिखती है, बल्कि ये भी पूछते हैं कि ये क्यों बनी, इसका समाज पर क्या असर हुआ और इसने इंसानी सोच को कैसे आकार दिया।
सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि समझ की गहराई तक ले जाना है।
और उन्होंने सिर्फ जानी पहचानी लिपियों पर ही काम नहीं किया, बल्कि उन लिपियों को समझने की कोशिशों पर भी लिखा है जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं।
जैसे वो क्रेत की लीनियर ए या हमारी सिंधु घाटी की लिपि।
हाँ बिल्कुल, और उन्होंने उन लोगों की जीवनियां भी लिखी जिन्होंने इन रहस्यों को सुलझाया, जैसे मिस्र के हायरोग्लिफ्स को समझने वाले चैम्पोलियन या लीनियर बी को पढ़ने वाले माइकल वेंट्रेस।
और सबसे अच्छी बात यह है कि वे इतनी गहरी जानकारी को भी बहुत सरल और रोचक तरीके से पेश करते हैं।
हाँ, उनकी किताबें पढ़ने में भारी भरकम अकादमिक ग्रंथ जैसी नहीं लगती, बल्कि एक रोमांचक कहानी की तरह लगती हैं,
जो हमें इंसानी दिमाग की अद्भुत क्षमताओं से रूबरू कराती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, ये किताबें हमें लेखन के बारे में क्या बताती हैं?
देखिए, रॉबिन्सन की ये किताबें लेखन प्रणालियों की पूरी कहानी कहती हैं, गुफाओं में बने शुरुआती निशानों से लेकर आज के डिजिटल अक्षरों तक।
अच्छा, पूरी यात्रा।
हाँ, ये हमें बताती हैं कि दुनिया भर में लिखने के कितने अलग अलग तरीके विकसित हुए, क्यों हुए और वे कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ अलग अलग लिपियों की सूची नहीं है, बल्कि उनके पीछे के तर्क और इतिहास की पड़ताल है।
निश्चित रूप से, और किताबों का एक केंद्रीय विचार ये है कि लेखन सिर्फ बोली जाने वाली भाषा को रिकॉर्ड करने का एक तरीका भर नहीं है।
बिल्कुल नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर है। रॉबिन्सन इसे सभ्यता का इंजन कहते हैं।
सभ्यता का इंजन, वाह।
हाँ, एक ऐसी तकनीक जिसने हमारी सोचने की क्षमता को मौलिक रूप से बदल दिया, हमारी चेतना को विस्तार दिया।
तो लेखन की भूमिका सिर्फ संवाद दर्ज करना नहीं थी, बल्कि जटिल समाज, कानून, साहित्य, विज्ञान, इन सब की नींव रखना था।
हाँ बिल्कुल यही, किताब हमें शुरुआती प्रोटोराइटिंग से परिचित कराती है, वो निशान या चित्र जो किसी चीज या विचार को दर्शाते थे, पर किसी खास भाषा की ध्वनियों या व्याकरण को नहीं।
जैसे वो हिसाब रखने वाले निशान।
हाँ, जिसे हजारों साल पहले हिसाब रखने के लिए बनाए गए निशान। फिर आता है सच्ची लेखन प्रणाली का विकास, जो बोली जाने वाली भाषा को लगभग पूरी तरह लिख सकती थी।
मेसोपोटामिया की वो कीलाक्षर लिपि, मिस्र की चित्रलिपि।
बिल्कुल, क्यूनिफॉर्म हायरोग्लिफ्स, चीन के अक्षर और मेसो अमेरिका की माया लिपि, ये सब सच्ची लेखन प्रणालियों के शुरुआती उदाहरण हैं।
और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि रॉबिन्सन इन प्रणालियों को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटते हैं, उनके काम करने के तरीके के आधार पर।
हाँ, ये वर्गीकरण समझना जरूरी है।
पहला, लोगोग्राफिक, जहां हर चिन्ह मोटे तौर पर एक पूरे शब्द या अर्थ की इकाई को दर्शाता है, जैसे चीनी अक्षर।
हाँ, इनका लक्ष्य सीधे अर्थ को पकड़ना होता है।
दूसरा, सिलेबिक, जहां हर चिन्ह एक पूरे शब्दांश को दर्शाता है, जैसे क, के, कु। जापानी हिरागाना और काताकाना इसका उदाहरण है।
इनका लक्ष्य भाषा की ध्वनि इकाइयों यानी शब्दांशों को पकड़ना होता है।
और तीसरा अल्फाबेटिक यानी वर्णमाला, जैसे हमारी देवनागरी या रोमन लिपि, जहां हर चिन्ह एक मूल ध्वनि, स्वर या व्यंजन को दर्शाता है।
इनका लक्ष्य भाषा की सूक्ष्मतम ध्वनियों को पकड़ना होता है, और रॉबिन्सन इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि वर्णमाला ही सबसे उन्नत या सर्वोच्च प्रणाली है।
हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो कहते हैं कि हर प्रणाली का विकास उसकी भाषा और संस्कृति की जरूरतों के अनुसार हुआ है।
बिल्कुल, कोई एक स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये जो असली लेखन है ये कहाँ और कैसे शुरू हुआ?
रॉबिन्सन बताते हैं कि असली लेखन यानी जो बोली जाने वाली भाषा को दर्ज कर सके, इसका आविष्कार दुनिया में कम से कम चार जगहों पर स्वतंत्र रूप से हुआ।
चार जगह कौन कौन सी?
मेसोपोटामिया, आज का इराक, मिस्र, चीन और मेसो अमेरिका यानी मध्य अमेरिका। और ये कोई एक रात में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे विकसित हुआ।
जैसे मेसोपोटामिया के उरुक शहर से मिली वो मिट्टी की गोलियां,
हाँ, लगभग 5,000 साल पुरानी। वो दिखाती हैं कि शुरुआती लेखन का मकसद मुख्यतः हिसाब किताब रखना था।
अच्छा,
कितनी भेड़ें, कितना अनाज।
अच्छा, तो मतलब लक्ष्य था लेखा जोखा रखना।
बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे इसी प्रणाली का विकास कहानियां, कानून और धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए होने लगा, तो शुरुआती लक्ष्य बाद में ज्ञान और संस्कृति को सहेजने में बदल गया।
और उन लिपियों को पढ़ने की कहानी जो सदियों पहले भुला दी गई थी, वो तो कमाल की है, जैसे मिस्र की चित्रलिपि।
हाँ, हायरोग्लिफ्स। सदियों तक लोग इन्हें सिर्फ रहस्यमयी चित्र मानते रहे। फिर मिला रॉसेटा स्टोन।
हाँ, रॉसेटा स्टोन, जिस पर एक ही संदेश तीन लिपियों में लिखा था।
बिल्कुल, हायरोग्लिफ्स, डेमोटिक और प्राचीन ग्रीक। इसी की मदद से जॉन फ्रांसवा चैम्पोलियन ने 1820 के दशक में इस पहेली को सुलझाया
और साबित किया कि ये सिर्फ चित्र नहीं है।
हाँ, बल्कि ध्वनि और अर्थ दोनों को दर्शाने वाली एक जटिल प्रणाली है। उसका लक्ष्य सिर्फ चीजें दिखाना नहीं बल्कि भाषा को लिखना था।
कमाल है। और ऐसे ही एक और रोमांचक किस्सा है माइकल वेंट्रिस का। वो तो आर्किटेक्ट है ना?
हाँ, भाषाविद नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड तोड़ने के अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 1950 के दशक में क्रेते द्वीप से मिली एक अनजान लिपि लीनियर बी को पढ़ लिया।
और क्या निकला वो?
पता चला कि वो असल में प्राचीन ग्रीक भाषा थी। ये खोजें बताती हैं कि इन लिपियों को समझना सिर्फ एक अकादमिक पहेली सुलझाना नहीं है,
बल्कि अतीत की पूरी सभ्यताओं और उनकी आवाजों को फिर से जिंदा करना है।
बिल्कुल, ये लिपियां उस समय के समाज, उनके ज्ञान और उनके लक्ष्यों की कुंजी हैं।
और आज भी कुछ लिपियां हैं जो हमारे लिए पहेली बनी हुई है, जैसे आपने बताया लीनियर ए, सिंधु घाटी लिपि।
हाँ, ईस्टर आइलैंड की रोंगो रोंगो। इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन्हें समझना शायद हमें उन प्राचीन संस्कृतियों के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दे सकता है।
क्या आज की टेक्नोलॉजी जैसे AI इसमें कुछ मदद कर सकती है?
दें, क्या लगता है? ये खुला सवाल है। कोशिशें तो हो रही हैं, देखें क्या होता है।
अब आते हैं लिखने के उन विभिन्न प्रकारों पर जिनका जिक्र आपने किया था। पहला, लोगोग्राम, जहां एक चिन्ह एक शब्द या अर्थ बताता है। चीनी लिपि इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है।
हाँ, जो हजारों सालों से लगातार इस्तेमाल हो रही है। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है।
नहीं
नहीं, इनमें अक्सर एक हिस्सा अर्थ का संकेत देता है, जिसे सेमांटिक रेडिकल कहते हैं, और दूसरा हिस्सा आवाज का, जिसे फोनेटिक कंपोनेंट कहते हैं।
अच्छा, ये तो जटिल है।
हाँ, और सोचिए, चीन में इतनी अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन लिखित भाषा एक होने के कारण संस्कृति और प्रशासन सदियों तक एकजुट रहा।
तो इस प्रणाली का लक्ष्य विचारों और शब्दों को सीधे तौर पर दर्शाना था, जिसने एक विशाल और विविध आबादी को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
बिल्कुल। दूसरा प्रकार है सिलेबिक यानी शब्दांश आधारित। यहाँ हर चिन्ह एक पूरे शब्दांश की आवाज बताता है, जैसे का, मे, रो।
जैसे जापानी हिरागाना और काताकाना।
हाँ, और एक और अद्भुत उदाहरण अमेरिका की चेरोकी जनजाति का है। 19वीं सदी में सिकोया नाम के एक व्यक्ति ने,
जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे,
हाँ, उन्होंने अपनी भाषा के लिए पूरी तरह से एक नई सिलेबिक लिपि बना डाली।
कमाल है। उनका लक्ष्य क्या था?
उनका लक्ष्य था अपनी भाषा और ज्ञान को संरक्षित करना और अपने लोगों को साक्षर बनाना। ये लिपियां उन भाषाओं के लिए ज्यादा कारगर होती हैं जिनमें शब्दांशों की बनावट सीधी साधी हो।
और तीसरा प्रकार जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, वो है वर्णमाला यानी अल्फाबेट, जैसे हमारी देवनागरी या अंग्रेजी की रोमन लिपि।
हाँ, यहाँ हर अक्षर एक मूल ध्वनि, स्वर या व्यंजन बताता है। इसकी शुरुआत माना जाता है कि लगभग 3800 साल पहले मध्य पूर्व में हुई थी।
फोनीशियन लोगों ने सिर्फ व्यंजनों के लिए अक्षर बनाए थे ना?
हाँ, फिर यूनानियों ने इसमें स्वरों के लिए अक्षर जोड़कर इसे पूरा किया। ये प्रणाली बहुत लचीली साबित हुई।
लचीली कैसे?
क्योंकि थोड़े से अक्षरों से किसी भी भाषा की लगभग सारी ध्वनियाँ लिखी जा सकती थी।
इसी वजह से व्यापार, धर्म और साम्राज्यों के साथ ये दुनिया भर में फैली।
लैटिन, सिरिलिक, अरबी और भारत की ब्राह्मी से निकली तमाम लिपियाँ।
हाँ, जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित
हैं। पर रॉबिन्सन यहाँ एक जरूरी बात कहते हैं, वो ये कि वर्णमाला इसलिए सफल नहीं हुई कि वो स्वाभाविक रूप से दूसरों से बेहतर थी।
हाँ, ये महत्वपूर्ण है।
बल्कि इसलिए कि वो अलग अलग भाषाओं और जरूरतों के हिसाब से आसानी से ढाली जा सकती थी।
उसकी सफलता का राज उसकी अनुकूलन क्षमता यानी अडैप्टेबिलिटी में था।
उसका लक्ष्य भाषा की ध्वनियों को बारीकी से पकड़ना था, जो कई भाषाओं के लिए सुविधाजनक साबित हुआ।
बिल्कुल।
अब बात आती है एक बहुत ही रोचक मोड़ पर, वो क्रांतिकारी विचार जिसने लेखन को सिर्फ चीजों या सीधे साधे शब्दों को लिखने से आगे बढ़ाया।
अच्छा, वो क्या है?
इसे रीबस सिद्धांत कहते हैं।
रीबस सिद्धांत, ये क्या होता है?
इसका मतलब है किसी चीज की तस्वीर का इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं बल्कि उसके नाम की आवाज के लिए करना।
उदाहरण दे सकते हैं?
मान लीजिए हमें हिंदी में कमल लिखना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कम और ल अक्षर का निशान है, तो हम उन दोनों को जोड़कर कमल शब्द की आवाज बना सकते हैं। या अंग्रेजी का उदाहरण लें, आंख का चित्र प्लस मधुमक्खी का चित्र प्लस पत्ती का चित्र।
आवाजें जुड़कर बनी आई बिलीव। अच्छा।
हाँ, ये सुनने में शायद बचकाना लगे, लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने लेखन के लक्ष्य को बदल दिया।
कैसे बदल दिया?
इसने लिखने वालों को सिर्फ बैल या घर जैसी ठोस चीजें ही नहीं बल्कि लोगों के नाम, अमूर्त विचार जैसे प्यार, न्याय और यहाँ तक कि व्याकरण के नियमों को भी लिखने में सक्षम बनाया।
तो ये चित्रलिपि से ध्वनि आधारित लेखन की ओर एक जबरदस्त छलांग थी।
बिल्कुल, इसने लेखन की भूमिका को जानकारी दर्ज करने से बढ़ाकर विचारों को व्यक्त करने और विकसित करने तक पहुँचा दिया।
अब लेखन के सामाजिक पहलू को देखते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी कौशल नहीं है, इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है।
हाँ, इतिहास में अक्सर साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता कुछ खास वर्गों जैसे पुजारियों या दरबारियों तक सीमित रही है।
मिस्र या मेसोपोटामिया में वो मुंशी स्क्राइब्स बड़े शक्तिशाली होते थे।
बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान और सूचना पर उनका नियंत्रण था।
लेखन का इस्तेमाल सिर्फ ज्ञान फैलाने के लिए नहीं बल्कि शक्ति बनाए रखने और सामाजिक वर्ग भेद को मजबूत करने के लिए भी हुआ।
तो इसका रोल दोहरा था, ज्ञान का वाहक भी और सत्ता का औजार भी।
सही का। और धर्मों के प्रसार में भी लेखन की भूमिका अहम रही है। धार्मिक ग्रंथों को लिखना, पढ़ना, उनकी नकल तैयार करना, ये कई संस्कृतियों में पवित्र कार्य माना गया।
लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया और साक्षरता फैली,
हाँ, तो आम लोगों तक सूचना की पहुंच बढ़ी। इससे यूरोप में रिफॉर्मेशन जैसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए। जब ज्ञान कुछ हाथों से निकलकर ज्यादा लोगों तक पहुंचा तो सत्ता की संरचनाएं हिल गई, तो लेखन की भूमिका नियंत्रण से सशक्तिकरण की ओर बढ़ने लगी।
बिल्कुल। और क्या अलग अलग लिपियां पढ़ना हमारे दिमाग पर भी अलग असर डालता है? ये भी एक दिलचस्प सवाल है।
हाँ, शोध बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे जो लोग वर्णमाला पढ़ते हैं उनके दिमाग के कुछ हिस्से सक्रिय होते हैं,
जबकि जो लोग चीनी जैसे लोगोग्राफिक अक्षर पढ़ते हैं उनके दिमाग में कुछ अलग हिस्से ज्यादा सक्रिय होते हैं।
और इसका असर डिस्लेक्सिया जैसी सीखने की अक्षमताओं पर भी पड़ता है ना?
हाँ, जो अलग अलग लिपियों में थोड़े अलग ढंग से जाहिर हो सकती हैं। यहाँ तक कि हाथ से लिखने और कीबोर्ड पर टाइप करने में भी हमारे दिमाग पर अलग अलग असर पड़ता है।
अच्छा, कैसे?
हाथ से लिखने में जो दिमागी प्रक्रिया होती है वो टाइपिंग से अलग है और शायद याददाश्त और सीखने में मदद करती है। स्कूलों में ये बहस चलती है कि बच्चों को हाथ से लिखना सिखाना कितना जरूरी है।
ये दिखाता है कि लेखन सिर्फ जानकारी दर्ज करने का जरिया नहीं बल्कि ये हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, हमारी सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण कॉग्निटिव भूमिका है।
बिल्कुल। और आज का डिजिटल युग, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन ने लेखन को कैसे बदल दिया है?
एक तरफ तो यूनिकोड जैसी तकनीक है जिसने दुनिया की लगभग हर लिपि को डिजिटल रूप देना संभव बना दिया है।
हाँ, इससे कई छोटी और लुप्त होती भाषाओं की लिपियों को बचाने में मदद मिली है। यूनिकोड का लक्ष्य वैश्विक संचार को संभव बनाना है।
दूसरी तरफ इमोजी हैं, क्या ये एक नई तरह की लेखन प्रणाली बन रहे हैं?
हाँ, शायद प्राचीन प्रोटो राइटिंग की तरह, जो विचारों और भावनाओं को सीधे दर्शाते हैं। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या आवाज से टाइप करने वाली तकनीक या AI भविष्य में लिखने की जरूरत को कम कर देंगे?
क्या लगता है आपको?
रॉबिन्सन क्या कहते हैं इस बारे में? रॉबिन्सन का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। तकनीक लेखन को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे बदलती है, उसके नए रूप और नए इस्तेमाल पैदा करती है।
जैसे मिट्टी की गोलियों से पपीरस आया, फिर कागज, फिर प्रिंटिंग प्रेस, फिर कंप्यूटर।
हाँ, हर बार लेखन बदला, लेकिन खत नहीं हुआ। डिजिटल युग में लेखन का रूप और भूमिका बदल रही है, शायद ज्यादा तात्कालिक, ज्यादा वैश्विक, ज्यादा मल्टीमीडिया युक्त हो रही है, लेकिन इसका महत्व बना हुआ है।
इसका लक्ष्य और भूमिका समय के साथ विकसित हो रहे हैं।
बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं।
हाँ, बताइए।
पहली, लेखन एक संज्ञानात्मक क्रांति है। ये सिर्फ बोली को लिखना नहीं है, इसने हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। अमूर्त विचार, जटिल योजनाएं, इतिहास का रिकॉर्ड, विज्ञान का विकास, ये सब लेखन के बिना संभव नहीं थे।
इसकी सबसे बड़ी भूमिका हमारी चेतना का विस्तार करना था।
सही। दूसरी, लेखन प्रणालियों की विविधता मानव अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। दुनिया में इतनी तरह की लिपियां इसलिए हैं क्योंकि हरेक अपनी भाषा, संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से विकसित हुई।
कोई एक प्रणाली स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं है। चीनी लिपि का हजारों साल चलना या वर्णमाला का फैलना, दोनों अपनी अपनी जगह सफल अनुकूलन के उदाहरण हैं।
और हर प्रणाली का अपना एक विशिष्ट लक्ष्य और भूमिका होती है। तीसरी बात, लेखन हमेशा से शक्ति संरचनाओं से जुड़ा रहा है।
हाँ, साक्षरता पर नियंत्रण अक्सर सूचना और सत्ता पर नियंत्रण का जरिया रहा है।
इसलिए लेखन का इतिहास सिर्फ तकनीक का इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का भी इतिहास है। इसका इस्तेमाल सशक्तिकरण और नियंत्रण दोनों के लिए हुआ है।
चौथी, तकनीक लेखन को लगातार बदलती और विकसित करती है। लिखने के साधन और तरीके बदलते हैं, जिससे लेखन की पहुंच और उसका इस्तेमाल भी बदलता है।
डिजिटल युग इसी विकास की ताज़ा कड़ी है जो लेखन की भूमिका और उसके लक्ष्य को फिर से परिभाषित कर रहा है। और पांचवी, विविधता के बावजूद कुछ सार्वभौमिक बाधाएं हैं।
जैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है।
हाँ, मानव मस्तिष्क जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, हमारी याददाश्त कैसे काम करती है, ये सीमाएं सभी लेखन प्रणालियों के विकास को प्रभावित करती हैं।
लिखने का तरीका कितना भी अलग हो, उसे बनाने और इस्तेमाल करने वाला दिमाग तो इंसान का ही है।
बिल्कुल। रॉबिन्सन की किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वे कहते हैं, सार रूप में, लेखन मानव बुद्धि की शायद सबसे शानदार उपलब्धि है।
यह हमें याद दिलाता है कि कितना मौलिक और परिवर्तनकारी आविष्कार रहा है। इसकी भूमिका सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि हमारी पूरी बौद्धिक क्षमता का विकास करना था।
एक और महत्वपूर्ण विचार, हर लेखन प्रणाली भाषा को पकड़ने का एक समाधान है, लेकिन हर समाधान उसे बनाने वाले लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी सोच के बारे में कुछ अलग बताता है।
ये लेखन के गहरे सांस्कृतिक आयाम पर जोर देता है। हर लिपि अपने समाज का आईना होती है, उसका अपना एक इतिहास और लक्ष्य होता है।
और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वर्णमाला इसलिए दुनिया में नहीं फैली कि वो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि वो विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के लिए ज्यादा आसानी से अपनाई जा सकती थी।
हाँ, ये हमें अपनी परिचित प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानने की सोच पर सवाल उठाने को कहता है।
बिल्कुल। और ये दो बातें भी ध्यान देने लायक हैं। पहला, पढ़ना सीखना हमारे दिमाग को उन तरीकों से बदलता है जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझना शुरू ही कर रहे हैं।
ये लेखन की गहरी संज्ञानात्मक भूमिका की ओर इशारा करता है।
और दूसरा, डिजिटल तकनीक लेखन प्रणालियों को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि उनके विकास और आपसी मेलजोल के लिए नई संभावनाएं बना रही है।
ये भविष्य के प्रति एक उम्मीद भरा नजरिया है जो लेखन के बदलते लक्ष्य और भूमिका को स्वीकार करता है। ये विचार हमें लेखन को सिर्फ स्कूल में सीखी जाने वाली चीज की तरह नहीं देखते।
हाँ, बल्कि एक जीवित, विकसित होती हुई प्रणाली के रूप में देखने में मदद करते हैं जिसका हमारी जिंदगी और समाज पर गहरा असर है।
बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, मतलब क्या व्यावहारिक उपयोग हैं इसके?
कई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सोचिए, ये समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए।
हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सारी भाषाएं और लिपियां हैं, ये समझना जरूरी है कि हर लिपि की अपनी खासियत होती है।
बिल्कुल। साथ ही हाथ से लिखने बनाम टाइपिंग की बहस में यह हमें याद दिलाता है कि दोनों के दिमागी फायदे नुकसान अलग हो सकते हैं। शिक्षा का लक्ष्य प्रभावी संचार और सोच विकसित करना है, और ये समझ उसमें मदद करती है।
भाषा संरक्षण में भी ये ज्ञान बहुत काम का है। कई छोटी जनजातीय भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है।
हाँ, अगर उनके लिए उनकी भाषा की ध्वनियों के अनुकूल एक अच्छी लेखन प्रणाली बनाई जाए तो उन भाषाओं और उनसे जुड़ी संस्कृतियों को बचाने में मदद मिल सकती है।
सिकोया का चेरोकी लिपि बनाना इसी का उदाहरण है कि कैसे लेखन भाषा को नया जीवन दे सकता है। यहाँ लेखन का लक्ष्य सांस्कृतिक धरोहर को बचाना बन जाता है।
अंतर सांस्कृतिक संचार में भी ये उपयोगी है। जब हम अलग अलग देशों या संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करते हैं तो ये समझना कि उनकी लेखन प्रणाली कैसे काम करती है हमें उनकी सोच और संवाद के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।
जैसे जापानी या चीनी व्यापारिक साझेदारों के साथ काम करते समय उनकी लेखन परंपरा की थोड़ी समझ भी रिश्ते बेहतर बना सकती है।
और टेक्नोलॉजी डिजाइन में तो इसका सीधा उपयोग है। जब सॉफ्टवेयर या वेबसाइटें पूरी दुनिया के लिए बनाई जाती हैं तो उनमें दुनिया भर की लिपियों को सही ढंग से दिखाना।
हाँ, जैसे लिखने की दिशा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, उनके अक्षरों को सपोर्ट करना जरूरी होता है।
बिल्कुल, यूनिकोड इसी जरूरत का नतीजा है जिसका लक्ष्य है कि हर भाषा हर लिपि डिजिटल दुनिया में अपनी जगह पा सके।
और आखिर में व्यक्तिगत विकास के लिए भी, कोई नई लिपि सीखना, चाहे वो किसी दूसरी भारतीय भाषा की हो या किसी विदेशी भाषा की, हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत है।
हाँ, ये हमारी सोच को लचीला बनाता है और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि लेखन सिर्फ जानकारी दर्ज करने का साधन नहीं है, ये इंसान की रचनात्मकता, अनुकूलन क्षमता और बौद्धिक विकास का प्रतीक है।
हाँ, इसकी विविधता ही इसकी खूबसूरती है।
और ये दिखाती है कि इंसान ने अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से संवाद और ज्ञान को सहेजने के कितने अलग अलग तरीके खोजे हैं।
मेरे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि कोई एक लेखन प्रणाली सबसे अच्छी नहीं होती। हर प्रणाली का अपना तर्क, अपना इतिहास और अपना उद्देश्य होता है। देवनागरी, चीनी अक्षर, अरबी लिपि या कोई और, सब अपने आप में पूर्ण और सफल हैं।
और आज का डिजिटल युग लेखन का अंत नहीं बल्कि उसके विकास का एक नया अध्याय है।
बिल्कुल, इसी इतिहास और विविधता को समझना हमें न सिर्फ अपने अतीत को बेहतर जानने में मदद करता है बल्कि आज की जटिल जुड़ी हुई दुनिया में संवाद करने और सोचने के बेहतर तरीके खोजने में भी मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।